जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री गौ माता की श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री राधा मान बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। सबसे पहले हम एक आपको बात बताना चाहते हैं कि गौशाला में बैठकर हम जो भी साधना करते हैं उसका 100 गुना लाभ प्राप्त होता है। अगर आपको 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना है और आपके पास इतनी क्षमता नहीं है, तो अगर आप 1 ब्राह्मण को गौशाला के बीच में बैठकर भोजन कराएंगे तो आपको 100 ब्राह्मणों को भोजन करने का लाभ मिलेगा। उसी तरह से 1 मंत्र यहाँ बोलेंगे तो आपको 100 बार उसका लाभ मिलेगा। और पहले से ब्रजभूमि में बैठने का लाभ है ही ना, बीच में 100,000 बार, उसमें 100 बार ऐड हो जाएगा। ऐसा गौशाला का महिमा है। यहाँ पर अगर आप कीर्तन करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, जप करेंगे, सेवा करेंगे, व्रत करेंगे, जो भी कृष्ण भक्ति में संलग्न कोरी भी कार्य करेंगे, तो उसका गौशाला में बैठने से 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। बोलो गौ माता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी बोलेंगे ना प्रेम से हरे कृष्णा मंत्र, एकदम प्रेम से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत में भी ऐसे बीच बीच में हर एक कथा के बाद सुखदेव जी महाराज फल बताते हैं। कारण क्या है बताइए? एक तरफ लिखा है श्रीमद् भागवतम अमलम पुराण है, कोई भौतिक लाभ के लिए उसको सुनना नहीं चाहिए, ना किसी भौतिक लाभ के लिए उसको बनाया गया है, ना कोई भौतिक लाभ की विधि उसके अंदर बताई गई है। फिर बीच बीच में सुखदेव जी महाराज ये फलश्रुति क्यों बता रहे हैं? एनीबडी नोज द रीजन? इसका कारण यह है कि सुखदेव महाराज की सभा में केवल शुद्ध भक्त नहीं थे, बहुत सारे लोग थे उसके अंदर। कर्मकांडी भी थे, ज्ञानकांडी भी थे, हर प्रकार के लोग थे। तो जैसे ही हम बताते ना अभी 100 बार लाभ मिलेगा, तो जो लोग सो रहे थे वो भी उठ के जाप करेंगे तुरंत, क्योंकि सबको शॉर्टकट चाहिए है ना। तो ये इंजेक्शन देते रहते बीच बीच में, ये गजेंद्र मोक्ष सुनने के बाद में सब निद्रा के विकार नष्ट हो जाएंगे, सब निद्रा के रोगी तुरंत गजेंद्र मोक्ष पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सभी प्रकार के श्रोताओं का उत्साह सुनने में बना रहे। शुद्ध भक्तों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसके लिए बैठे नहीं थे वहां पर, वो तो कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए बैठे थे। लेकिन जो बाकी प्रकार के जो लोग थे, उन सब लोगों को उत्साहित रखने के लिए उन्होंने हर एक अध्याय लीला के बाद में एक एक फलश्रुति का वर्णन दिया है। और वो झूठ मूठ का नहीं, वो भी सच है। लेकिन शुद्ध भक्त जो होते हैं वो फलश्रुति को देखकर उस कथा को नहीं सुनते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा उत्साह आपको दिला दें। आप गाय के बीच में बैठे हैं, इत गाय उत गाय, सब जगह गाय ही गाय है। यहाँ पर माताजी गौशाला में 55,000 गोवंश है, 55,000 काउज। किसी एक हज़ार गाय से शुरू हुआ था और हर 2-3 महीने में बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। अभी इतना विशाल गौवंश यहाँ पर है कि उसमें बहुत सारी गौ बीमार भी रहती है, बीमार आती ही है। कुछ समय पे आती कैसी है, जो लोग गौ पालन नहीं कर सकते हैं, उनका क्षमता नहीं है, वो छोड़ जाते हैं, रास्ते में जो आवारा घूम रही है उनको ले आते हैं, या कोई अपघातग्रस्त हैं, कोई पीड़ित हैं, कोई दुर्घटनाग्रस्त हैं, वो आ जाती हैं। कई गायें ऐसी हैं जो कुछ कसाई लोग उनको काटवाने के लिए ले जाते रहते हैं, तो ये लोग जाकर बंदूक बंदूक चला के उसको छुड़वाते हैं उनसे, ट्रक जाते रहते हैं रात को, तो उनसे युद्ध करके वो गाय को छुड़ाते हैं और वो गाय यहाँ पर आ जाती है। कुछ गर्भवती होती है, कुछ बैल होते हैं, ऐसे बहुत प्रकार के, हर प्रकार के गोवंश यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है रक्षा, उनका कत्ल होने से उनकी रक्षा का वध न किया जाए इसलिए, और दूसरा है गौ सेवा। तो गौशाला का इतना महत्व है हमारे जीवन में, अभी आपको बताऊंगा, मैं कल भी बताया था थोड़ा सा हल्के में, लेकिन आज अच्छी तरह समझाऊंगा आपको कि राष्ट्र जो है, राष्ट्र देश, देश के 7 स्तंभ होते हैं, 7 पिलर्स, जिस पर देश की वृद्धि होती है, देश का गौरव होता है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो है देश का, वो है गाय। ब्रज की व्याख्या ही ऐसी की गई है कि जहां पर गाय निर्भय होकर विहार करती है, जहां पर गायों को विहार करने में कोई भय नहीं है, उस जगह को ब्रज कहते हैं। और एक जमाने में पूरा भारतवर्ष ही ब्रज था, क्योंकि कहीं पर भी गाय की हत्या नहीं हो रही थी। हम सब लोगों को सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, हम सोचते हैं कि मुसलमान लोग गाय का वध करते हैं, वो गाय खाते हैं, लेकिन आज से कुल केवल 100-150 या मैक्सिमम 200 ईयर्स पहले की बात है, जब हुमायूं का जन्म हुआ था, बाबर का लड़का था ना, इस बाबर पुत्र, जब हुमायूं का जन्म हुआ था तो हुमायूं की माता तुरंत मर गई थी जन्म होने के बाद, हुमायूं को जन्म देने के बाद तुरंत उसका देहांत हो गया था। तो हुमायूं का पूरा लालन पालन जो है वो गाय के दूध पे हुआ था, ही वॉज सर्वाइव्ड ओनली ऑन काउ मिल्क। तो एक दिन हुमायूं के राज्य में किसी ने गाय का वध किया, तो उसने हुमायूं ने उसको मृत्युदंड दे दिया उस व्यक्ति को। हुमायूं को गाय पर बहुत प्रेम था और वो उसके राज्य में, भले वो था, क्या कहते हैं उसको, यवन, लेकिन फिर भी उसके राज्य में कहीं भी गाय का वध नहीं होता था। अभी हम विचार कर सकते हैं इसके बारे में, कल्पना कर सकते हैं, उनके राज्य में 1,000 साल भारतवर्ष में यवनों का राज्य रहा, 1,000 साल, उसमें कभी भी यंत्र से जानवर को काटने के कोई कंपनी नहीं थी। जो भी यवन लोग जानवर काटते थे वो घरेलू तौर पे काटते थे, मतलब होम बेस्ड, लेकिन यंत्र से काटने की कोई व्यवस्था उस समय भी नहीं थी। ये सब ब्रिटिशों के काल में शुरुआत हुआ, ब्रिटिशों ने सब कुछ ये आधुनिक तरीके, मशीनें सब लेकर आए वो, और बहुत समय तक उसमें भी केवल गाय छोड़ के बाकी सब जानवर कटते थे। ये अभी अभी जो अमेरिकन कल्चर आया ना, इसमें से ये गाय कटने का काम शुरू हो गया, और गौ मांस का निर्यात की कल्पना भी नहीं होती थी कभी। यवन राजा भी कभी भी मांस का निर्यात नहीं करते थे, एक्सपोर्ट। अभी इतना दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे भारतवर्ष सबसे बड़ा गौ मांस का एक्सपोर्टर है, भारत देश। कैन यू बिलीव दिस? जिस देश का नाम ही ब्रज है, जहां पर गायें निर्भय होकर विहार करती थी, उस देश से सबसे अधिक, वर्ल्ड में सबसे अधिक एक्सपोर्ट गाय के मांस का अपने देश से होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गाय राष्ट्र का सबसे पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ है ब्राह्मण, जो गौ माता की सेवा करके अपने आप को समृद्ध करते हैं। पुराने जमाने में वेदों में, वेदों लिखित काल में, वैदिक लाइफ, मतलब हर एक ब्राह्मण के पास एक गौ हुआ करती थी, कम से कम एक, लेकिन सभी के पास गौ धन हुआ करता था। एक समय था जब गौ ही धन के रूप में मानते थे, ऐसा नहीं, कितने सोने की मोहरे भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन गौ ये धन मानते थे। आज भी हम जब विवाह करते हैं पुरोहित के रूप में, तो सप्तपदी में एक एक मंत्र बोलते हैं, 5वें या 6वें मंत्र में आता है वो, कि मैं विष्णु को प्रार्थना करता हूँ, पति बोल रहे हैं पत्नी के लिए, कि विष्णु को प्रार्थना करता हूँ कि वो तुझे विपुल गाय धन दे दे। मतलब वो संपत्ति माने जाते थे उसको। तो ब्राह्मण का जो जीवन ही है वो गाय पर निर्भर है। वशिष्ठ मुनि थे, कितने सारे मुनि का वर्णन आता है, गाय ही उनके पूरे यज्ञ यजन पाठन के लिए जो भी जरूरत है, भजन करने के लिए, वो सब कुछ गाय देती थी उनको। जीवन का पूरा जितना भी जरूरत है सब गाय पूरा करती थी। अब ब्राह्मण जब अच्छी तरह रहते हैं, ब्राह्मण के स्तर पर सही ब्राह्मण के रूप में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वे वेद पढ़ते हैं। वेदों में पूरा जीवन का सार लिखा हुआ है। और जब वेद पाठी ब्राह्मण रहते हैं तो नारी जो है वो अगला स्तंभ है, सती नारी। सतीत्व जो है उसका वर्णन कहाँ दिया है, वेदों में दिया है। ब्राह्मण जब वेद पढ़ेंगे तो सतीत्व क्या है ये लोगों को सिखाएंगे, फिर उसके द्वारा सती नारियां निर्माण होंगी। ब्राह्मण, गाय, वेद और सती नारी, और इनके द्वारा जो शील, मतलब क्या कहते हैं उसको, सर्वश्रेष्ठ जो सर्वगुण संपन्न जो पुरुष हैं, उनका जन्म कहाँ से होता है, सती नारी से होता है। तो तीन प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया गया है जो अच्छे राष्ट्र के आधार हैं, वो है दानशील पुरुष, लोभ रहित पुरुष और सत्यवादी पुरुष। अभी तीन प्रकार के जो, अभी तो बहुत सारे गुण हैं उसमें, लेकिन तीन प्रमुख गुण जो है वो तीन स्तंभ में आते हैं, कुल मिला के सात स्तंभ हो जाते हैं। हाँ, गाय, ब्राह्मण, वेद, सती नारी और दानशील पांचवा, लोभ रहित छठवा और सत्यवादी सातवा। तभी आप देखिए जब गाय नहीं रहती है तो ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाते हैं, जब ब्राह्मण नहीं रहते हैं तो वेद कोई पढ़ाता नहीं है, तो जब वेद भ्रष्ट समाज हो जाता है तो नारी भी अपने जो चेस्टिटी है, सतीत्व को खो बैठती है। और जब नारी, और ऐसे कहा गया, जब वेद भ्रष्ट समाज है वो नारी के सतीत्व को छीन लेता है, सतीत्व नष्ट हो जाता है ऐसे वेद भ्रष्ट समाज से। फिर जो सतीत्व हार चुकी है ऐसे नारी से कौन से पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे, जो लोभी है, असत्यवादी है, हाँ, कंजूस है, हिंसा करने वाले हैं, कामी है, लोभी है, द्वेषी है, ऐसे पुरुषों का जन्म होता है, पूरा समाज भ्रष्ट हो जाता है। इसका मूल क्या है, उसका मूल गाय है। कभी कभी सुनने पर बहुत ऐसा अजीब लगता है कि गाय की रक्षा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा सा लगता है कि चाइल्डिश स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप साइंटिफिक सोचेंगे ना तो धीरे धीरे पता चलेगा हमको कि कैसे हमारे पूरे समृद्धि का आधार गाय है। दशरथ महाराज ने जब अभी पुत्रों का विवाह करने का प्रस्ताव रखा वशिष्ठ मुनि के सामने, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि विवाह करने के योग्य होने के लिए पहले आपका गौदान करना पड़ेगा। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन्होंने प्रत्येक 4-4 लाख गाय दान की, तभी वो शादी के प्रस्ताव के लिए योग्य बने। दे बिकेम क्वालिफाइड टू कंसिडर फॉर वेडिंग। ये महाभारत रामायण का प्रमाण है। इस तरह से गऊ गऊ जो है वो आज नहीं, अनादि काल से, मनुष्य जीवन के निर्माण काल से ही बहुत महत्वपूर्ण जीव रहा है। कल भी हमने कथा में बताया था कि मनुष्यों में राजा का शरीर सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो वेदी वेद काल के राजा हैं, ब्राह्मणों को आदर करने वाले हैं, धर्म को पालन करने वाले, वो जानते हैं कि राजा से भी अधिक महत्वपूर्ण शरीर गाय का है। क्योंकि राजा दूसरा आ सकता है, लेकिन एक गाय के अंदर सभी प्रकार के देवता निवास करते हैं। समुद्र मंथन जब हुआ था तो हलाल प्रकट हुआ था, हलाल के बाद में 14 रत्न निर्माण हुए थे, उसमें एक गाय का रत्न है, गाय का निर्माण हुआ था। तो जैसे ही गाय का निर्माण हुआ ना, तो कितने सारे, अभी घोड़ा भी आया था ना, उच्च श्रवा, वो बलि बलि महाराज को दिया गया, वज्र आया तो इंद्र को दिया गया, नहीं वो क्या, ऐरावत आया वो इंद्र को दिया गया। लेकिन अभी आपने सुना है क्या कि जैसे ही हाथी आया सब देवता शरीर में प्रवेश कर गए, सुना आपने कहीं? हाँ, अश्व आया तो सारे देवता प्रयास कर रहे कि मैं भी घुस जाऊं उस शरीर में, जैसे ही गाय का निर्माण हुआ सारे देवता उसके अंदर प्रवेश कर चुके, अपना अपना स्थान ग्रहण किया उन्होंने, और सब गाय का शरीर पूरा उन्होंने अपना स्नान ग्रहण कर लिया और गंगा देवी लेट आई, उनको भी गाय के शरीर में प्रवेश करना था, तो उनको कहा गया कि आप कभी सब कुछ जगह तो घेर लिया सब लोग ने, अभी आप गाय के मूत्र में निवास करो। तो गंगा जी ने गौमूत्र में निवास किया, उसके बाद लक्ष्मी आई सबसे लास्ट में। तो उन्होंने कहा मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने कहा गोबर में रहो आप, तो गोमये वसते लक्ष्मी। हमारे गुरुदेव भी एक बार आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि अगर आपको समझो बिजनेस भी करना है तो गाय के केवल गोबर से ही बिजनेस हो सकता है, केवल गोबर को अगर आप सही बुद्धि से उपयोग करोगे तो व्यापारी लोग भी असंख्य धन कमा सकते हैं, और उसके आगे जाकर गौमूत्र का भी उपयोग करोगे, केवल गौमूत्र और गोबर दो चीज़ों से पूरे राष्ट्र का इकोनॉमिक्स चल सकता है। अब एक महत्वपूर्ण बात हमको समझना जरूरी है, कितना गोधन था भारत में कि किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी भारतवर्ष में। जब ब्रिटिश लोग आए ना तो 1000 साल मुसलमान राज्य कर चुके थे हमारे ऊपर, बहुत सारा हाल अपेष्टा और छल क्या कहते हैं उसको पीड़ा दे चुके थे लोगों को। उसके बाद ब्रिटिश लोग आए, फिर भी हमारे देश में सभी लोग संतुष्ट थे, उस समय समृद्धि थी, कहीं पर हवस नहीं थी, कहीं पर लोभ नहीं था, कहीं पर किसी चाहत नहीं थी किस चीज़ की, सब लोग संतुष्ट रहा करते थे कि उनका पूरे परिवार का समाज का राज्य का और देश का केंद्र स्थान गाय था, गाय का पालन। तो वो लॉर्ड मैकॉले था, उसको इंग्लैंड से भेजा गया था स्पॉन्सर करके, पूरा उसका जर्नी वर्नी रहना खाना सब कुछ करना है, उसको पढ़ना है कहाँ पर पढ़ाई करनी है जो करना है सबके लिए उसको प्रचुर मात्रा में धन दिया था और उसको भेज दिया था भारतवर्ष में ये पता करने के लिए कि ये भारतीयों के संतुष्टि का राज क्या है। तो उसने ना पूरे भारत का एक एक चप्पा चप्पा यात्रा किया, हर एक जगह पर जहां पर कोई गांव है कोई शहर है हर जगह पर यात्रा किया और रानी को रिपोर्ट भेजा कि इस देश में मैंने पूरे देश में एक भी भिखारी नहीं देखा। आप यकीन कर सकते हैं आज इस बात को, हमारे देश की बात चल रही है, इंग्लैंड की बात नहीं कर रहे, अमेरिका की बात नहीं कर रहे, उधर भी भिखारी हैं लेकिन भारतवर्ष में तो हर जगह पर हर कदम पे भिखारी मिलते हैं। लेकिन वो मैकॉले जब रिपोर्ट बना रहा था तो वो एक भी भिखारी पूरे देश में कहीं नजर नहीं आया उसको, इतनी समृद्धि थी। और उसने भेजा है कि मेरा ये अभ्यास है, मेरा स्टडी का ये रिपोर्ट है कि सारे संतुष्टि का राज जो है वो गाय है। तो अगर आपको भारतवर्ष पर राज्य करना है, केवल ऐसे जबरदस्ती नहीं लोगों को सही में गुलाम बनाना है, तो गाय को इनके जीवन से हटाना पड़ेगा। ये उन्होंने रिपोर्ट दिया है, ये रिपोर्ट कई बार व्हाट्सएप पर भी आई है, वो समय की फोटोग्राफ आया उसका, साफ साफ लिखा है उसने कि इन लोगों को संतुष्टि से अगर हटाना है और गुलाम बनाना है, दो चीजें ना उसमें, आपको संतुष्ट से असंतुष्ट करना है, तो बाद में गुलाम बनेंगे ना, गुलाम कौन बनता है जो असंतुष्ट होता है, जिसको कुछ चाहिए होता है फिर कहाँ जाएगा कुछ मांगेगा वो, तो मांगने की जो जरूरत है वो पूरक तैयार करना है तो फिर पहले आपको पहले असंतुष्ट करना पड़ेगा, तो गाय को हटाना पड़ेगा। तो फिर कैसे हटाए, तो उसने भी पूरी योजना बनाई थी, पूरे सिस्टमैटिक। उन्होंने कहा सब गांवों में सब शहरों में मतलब उस समय जो भी था स्थिति, पर्वत के आसपास तो थे ना जमीन, वो गायरान कहा करती थी, अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं उसको, लेकिन गाय के चरने की एक जगह होती है जहाँ पर केवल गाय चरती है, वहाँ पर उस जमाने में कुछ लगाते नहीं थे कुछ करते नहीं थे, केवल गाय चरने के लिए छोड़ते थे वो, और वो गवर्नमेंट की तरह गौचारण जगह होती थी, वो फ्री होती जगह, वो किसी के नाम की नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से होती थी वो, प्रशासन की तरफ से, और वहाँ पर गाय चरती थी, अच्छी अच्छी घास खाती थी, घड़ी जड़ी बूटी वाली फर्स्ट क्लास नेचुरल और बहुत बढ़िया पोषक दूध देती थी। तो उन्होंने क्या किया, पर्वत के उतार पर और पर्वत के उतार के बाद वाली जगह पर चाय लगा दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि केवल 200-250 साल के पहले भारत में चाय थी ही नहीं, आजकल तो यहाँ पर बच्चा बच्चा भी चाय पीता है, और चाय के बिना जीवन मतलब ऐसा लगता है कि जीवन जिए ही क्यों, इतना चाय का स्थान बन गया, बच्चा भी चाय पीता है, और चाय नहीं देंगे तो अपमान समझते हैं अपराध समझते हैं, कहाँ कहाँ तक चाय अपने जीवन में घुस गया है। तो उन्होंने पहले चाय इंट्रोड्यूस किया और लोगों को फ्री में चाय दिया, इसको पियो बहुत बढ़िया है फ्रेश हो जाएंगे आप। तो लोग उसको पीने लगे, पहले फ्री में दिया, फिर आदि हो गए तो फिर खरीदने लगे। और चाय का व्यापार तो बसा है, लेकिन चाय का व्यापार तो एक ऊपरी ऊपरी का बिजनेस का कारण था। गाय के भोजन का जगह अपने आप रद्द हो जाएगी इससे, तो चाय लाना मतलब दो टप्पी उद्देश्य था उनका। इधर गाय को चारा मिलना कम हो गया, तो जो गाय एक हमारे लिए आदर्श था, हमारे लिए एक प्रेमी व्यक्ति थी, घर की परिवार का सदस्य था, वो बोझ बनने लगा। फिर धीरे धीरे गाय बोझ बनने लगी, तो फिर उसको किसी को देने लगे, फिर किसी को देने लगे, फिर उन्होंने गाय कटवाने का शुरुआत किया। उसके बाद में ऐसे ये धीरे धीरे हुआ है, तो समझ में नहीं आया किसी के कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर गाय को कटना शुरू किया, फिर उसका मांस खाना शुरू हुआ, फिर ब्रिटिशों ने गोली बारूद हैंड ग्रेनेड उसको गाय का मांस का वो सील लगा दिया। ऐसे करते करके फिर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि यहाँ के गाय का मांस सबसे स्वादिष्ट है, तो वो सब विदेशों में जाने लगा। इस तरह से हमारा देश भिखारी हो गया, जो गाय के ऊपर समृद्ध था, गाय को धीरे धीरे करके हटाया, वो पूरा देश भिखारी हो गया। आज भी विदेश में, अभी आज के तारीख में नहीं कहते हैं, पिछले 5 साल से, लेकिन उसके पहले, ओ दैट कंट्री ऑफ बेगर्स, वो भिखारियों का देश, यहाँ पर जगह जगह भिखारी मिलते हैं। ऐसे हमारी ख्याति विदेश में बना के रखी है। और हमको सुनकर आश्चर्य हो गया कि ब्रिटिश के काल में भी इतने गौवध नहीं होता था, जो स्वतंत्रता के बाद में हमारे देश में हुआ है। हमको लगा था कि इंडिपेंडेंस के बाद में सब हम लोग सुधार देंगे, जो भी कुछ गंवाया है। वहाँ अशोक के राज तक, अशोक था ना राजा अशोक, तब तक भारतवर्ष पूरे वर्ल्ड में समृद्ध था। तब तक बाकी सारे देश जो आज समृद्ध हैं, वो भारत से लोन लेते थे। आप विचार भी नहीं कर सकते ऐसा हो सकता है क्या। तो सपनों की बात कर रहे हैं तो ऐसी कविता लिख रहे हैं आप, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन अभी अभी तक अशोक मतलब कितने साल हो गए, 300 साल पहले जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था, उसी आसपास की बात है। तब तक भारतवर्ष से सभी देशों में कर्ज दिया जाता था, इतना समृद्ध देश था ये। लेकिन जैसे जैसे गाय को हटा दिया गया, किसको समझ में भी नहीं आया कैसे भी हो सकता है। गाय नष्ट हो गए, ब्राह्मण नष्ट हो गए, वेद भ्रष्ट समाज हो गया, सतीत्व नष्ट होने लगा। हाँ कहते हैं कि गाय का जो पीछे का हिस्सा है, लक्ष्मी के होने की वजह से वंदनीय होता है। घोड़े का मुख जो है वो पवित्र माना गया है वेदों के अनुसार, लेकिन नारी का शरीर जो है वो, नारी के शरीर का सारे अंग, जितने भी अंग शरीर नारी के हैं, वो नारी के सारे शरीर के अंग पवित्र माने गए हैं, कोई ज्यादा और कम पवित्र नहीं है। और नारी के शरीर को इतनी सम्मान था, क्यों था, वेद पाठी लोगों की वजह से था। वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण भ्रष्ट हो गए, गाय नष्ट हो गई, तो सारा चीज नष्ट हो गया। फिर वो सब स्त्री पे उसका हमला हो गया, स्त्री का आदर सम्मान नष्ट हो गया। फिर उसके बाद समाज भ्रष्ट हो गया, फिर भ्रष्ट समाज की, फिर और भ्रष्ट औरतें, फिर और भ्रष्ट समाज, फिर औरतें भ्रष्ट हो गई। इस तरह से आज का नजारा हम देख रहे हैं। वेदों में लिखा गया और आचार्यगण भी कहते हैं कि केवल गाय की रक्षा करने से भारतवर्ष पूरे विश्व को भोजन खिला सकता है। चवन ऋषि समुद्र के अंदर बैठकर तप कर रहे थे, और मछलियों को पकड़ते पकड़ते एक मछुआरे ने चवन ऋषि को भी पकड़ लिया। तो वे चवन ऋषि के सब हैरान हो गए, अभी उनका अपराध को कैसे टालना है। तो उन्होंने कहा कि वो चवन ऋषि का मोल दे दो, आप मछलियों को छोड़ो और चवन ऋषि को अगर अपराध से मुक्त करना है आपको, अपने आप को, तो उनका मोल दे दो। तो चवन ऋषि के सामने सब प्रस्तुत किया गया, सोने जवाहरात हीरे, तो उनका मोल ही नहीं हो रहा था। उनको पृथ्वी का राज्य दिया गया, फिर भी उनका मोल पूरा नहीं हुआ। एक संत के जीवन का मोल कैसे चुका सकते हैं हम। तो 14 लोगों का राज्य भी दिया गया उनको, तो भी उसका मोल पूरा नहीं हुआ। फिर सब लोग सोचने लगे अभी क्या करें, चवन ऋषि को अभी इसे अपराध से मुक्त कैसे हो जाए। तो एक गरीब ब्राह्मण आया, बोला मैं जानता हूं इनका मूल्य कैसे चुकाना है। एक गाय लेकर आया, वो बोले इसे ले लो, चवन ऋषि को पूछो अभी आपका क्या कहना है। तो चवन ऋषि ने कहा कि ये मेरे से कई गुना, हजारों गुना अधिक मूल्य है ये, और एक गाय देकर वो सब चवन ऋषि के अपराध से मुक्त हो गए। इमेजिन कितना कितना मूल्य है गाय का। गाय ऐसे एक ही जानवर है जो अपने एक्सपिरेशन श्वास छोड़ते हैं ना, उच्छ्वास कहते हैं उसको, उसमें ऑक्सीजन छोड़ता है। हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कर्बद द्वि प्राणिल वायु, एक ही ऐसा प्राणी है पूरे विश्व में, पूरे निर्माण में ब्रह्मा जी के, जिसका मलमूत्र भी औषधि गुणकारी और अमृत समान है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसका मलमूत्र इतना कीमती है। ऐसे कहा गया है कि गाय के दूध से भी अधिक कीमती जो है वो गाय का मलमूत्र है। दूध भी वो कुछ समय के लिए देती है, जब उसकी रिप्रोडक्टिव पुनरुत्पादन का समय होता है तो वो हो सकता है 5, 6, 10 जितने भी बालक जन्म देना है देती है, लेकिन उसके बाद भी वो कई साल जीती है। और सही रूप में देखा जाए तो गाय मनुष्य के लिए कभी भी बोझ नहीं बनती है, गाय हमेशा देती रहती है। हम लोगों ने उसके गोबर गोमूत्र का उपयोग करना भूल गए, अज्ञानी हो गए, उसके बारे में करते नहीं है उसके बारे में, इसलिए गाय बोझ बनती है। लेकिन गाय बोझ नहीं है, गाय हमें मरते दम तक धन देती रहती है। गाय की और एक विशेषता है कि गाय को कभी दान देना ऐसा सोचना नहीं चाहिए हमको, कभी कि हम गौ दान में दे रहे हैं, गऊ के लिए दान दे रहे हैं, ये गाय का अपमान है। हमको गौ सेवा में देना चाहिए। कभी भी गाय आपके ऊपर निर्भर है, जैसे हम लोगों ने क्या कहा प्रवचन में उस दिन यात्रा कैंप में, कि हम लोग यहाँ पर ब्रजवासियों पर उपकार करने आए हैं, वो बेचारे गरीब हैं, उनके पास धन नहीं है, उनके बेचारों की आंखें नष्ट हो रही है, हमारे पास कुछ कला है, हमारे पास कुछ शास्त्र है, पैसा है, तो हम करके यहाँ पर उनका उपकार कर रहे हैं, उनको नेत्र दे रहे हैं, ये सोचना ही गलत है। उनकी सेवा करके हम अपना उद्धार करना चाहते हैं। उस प्रकार से गाय किसी के ऊपर निर्भर नहीं है कि गाय को आप दान देंगे और आपके दान पर वो अपना जीवन चलाएगी। हम तो अपने उद्धार के लिए गाय की सेवा करना चाहते हैं। और एक बताता हूँ बात आपको, कि गाय को हम दान देते ना, मतलब दान देना नहीं चाहिए, सेवा में देना चाहिए, तो वो जो धन है ना, वो गाय के अलावा किसी भी वस्तु के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। हम अपने शहर में कैसा बजटिंग करते हैं कि गौशाला का एक खर्चा है, उसमें ग्वालों का एक खर्चा है, ग्वालों को रहने खाने का खर्चा है, ग्वालों को दूध पीने का खर्चा है, ग्वालों को दवाई का खर्चा है, फिर गौशाला की जमीन का भाड़ा है, बिजली का भाड़ा है, ये चारे का, मतलब चारे तो गाय के लिए, लेकिन बाकी जो सपोर्टिंग चीज़ें हैं ना, वो कहते हैं वो सारा खर्च जो है वो अलग जेब से करना चाहिए। और गाय के दान, गाय के सेवा का जो धन है वो केवल गाय के लिए करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर भी बहुत सारा गऊ के लिए सप्ताह करते हैं, भागवत कथा करते हैं, गऊ कथा करते हैं, तो उसमें बताया गया है कि उसमें भी स्पीकर लगता है, स्टेज लगता है, भोजन लगता है, चटाई लगती है, क्या क्या माइक्रोफोन लगता है, साउंड सिस्टम लगती है, बोले वो खर्चा सब ही अलग जेब से आना चाहिए। और उसमें उस सभा में जो गाय की सेवा में धन आएगा वो केवल ओनली डायरेक्टली गाय की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि गाय का धन अगर कोई अपने लिए उपयोग करता है तो वो कभी पचा नहीं सकता है। वो जो अपराध है वो बहुत ही भयंकर अपराध है। इसलिए गाय के बल पर और गाय के धन पर किसी भी व्यक्ति को अपना उदर निर्वाह नहीं करना चाहिए। गाय के सेवकों का खर्चा अलग से होना चाहिए। गाय का धन जो चोरी करता है वो बहुत जघन्य पाप का धन धनी हो जाता है। आप अगर किसी मारवाड़ी का धन खरीद चोरोगे या अमीर आदमी का धन चोरोगे तो एक प्रकार का पाप लगता है, वो भी जघन्य पाप में आता है। लेकिन वो चोरी के अंदर अगर गाय का धन चोरी करते हो, गाय को दिया हुआ दुरुपयोग करते हो, तो वो व्यक्ति भयंकर जघन्य पाप का धनी हो जाता है। तो इस प्रकार से कई चीजें हैं, थोड़े थोड़े आपको बताता हूं मैं आज। भगवान ने जब भी गौचारण शुरू किया तो आप सब जानते हैं कथा को, गोपाष्टमी के दिन तो मैया ने उनको जूता प्रस्तुत किया, जूता पहनो, छतरी लो। तो भगवान ने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने कहा यथा गावस तथा गोपालः, जैसे गाय रहती है वैसे ही गोपाल को रहना चाहिए। जिस प्रकार से गाय का जीवन चलता है उसी प्रकार से गऊ की सेवा करने वाले को रहना चाहिए। इसलिए भगवान ने उसी प्रमाण के रूप में स्वयं जूता नहीं स्वीकार किया, छतरी नहीं स्वीकार की, और गाय जिस जमीन पर चलती थी उसी जमीन पर खुद भी चलते थे नंगे पैर। ये सब मदर माता यशोदा को कृष्ण भगवान ने गोपाष्टमी के दिन कहा था। ये भी कहा गया कि राधा राधा कुंड और श्याम कुंड जो है वो पूरे विश्व में पूरे भगवान के निर्माण में सर्वश्रेष्ठ धाम है, वो पूरे ब्रह्मांड में भगवान के निर्माण में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पवित्र स्थान है तो राधा कुंड है। और वो भी राधा कुंड का दूसरा अगर सोचेंगे आप कथा, राधा रानी को गौ माता पर गौ वंश पर जो प्रेम था वही कारण है जिसके वजह से राधा कुंड प्रकट हुआ। अगर वो कहती नहीं कि आपने बैल का वंश बैल बैल का वध किया है, धर्म का प्रतीक है और मैं आपसे बात नहीं करूंगी, ये अगर नहीं कहते तो राधा कुंड निर्माण क्यों होता? और अच्छा किया आपने बैल का वध किया, राक्षस था बड़ा वो, भयंकर कंस का साथी था, बंग देश से आया था, बहुत गाय का रूप धारण करके आया था बैल का। तो ये राधा रानी के जो प्रेम है गौवंश पर, इसके वजह से ये पवित्रतम स्थान जो है पृथ्वी पर इकट्ठा हुआ, पृथ्वी पर प्रकट हुआ। फिर प्रभु रामचंद्र जब भी विश्वामित्र मुनि के साथ में जंगल गए ना, दशरथ महाराज के बाद में मान गए वो और उन्होंने भेजा उनको, तो पहले वध किसका किसका किया उन्होंने? सबसे पहले वध पक्का ना, सब लोग को पता है कि नहीं? सबसे पहले राक्षस का वध नहीं किया, राक्षसी का वध किया, पुतना का कृष्ण ने किया, मैं राम की बात कर रहा हूं। राम का, राम ने सबसे पहले ताड़का इस नाम के स्त्री राक्षसी का वध किया। तो जब विश्वामित्र उनको आदेश देते हैं तो पहले वो मना करते, मैं नहीं मारूंगा स्त्री को, तो कहते आपको वो समाज कल्याण के लिए करना होगा क्योंकि इसने बहुत हाहाकार मचा के रखा है, सब ऋषियों का जीवन यहाँ पर हराम करके रखा है, सब यज्ञ भ्रष्ट कर दी उसने, ऋषियों को खाती है वो, उसका पुत्र भी है सुबाहु और कौन था मारीच, सुबाहु और मारीच। तो भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है, जब भगवान कहते हैं हाँ ठीक है मैं मारूंगा, तो भगवान ने क्या कहा है, गो ब्राह्मण्य हितार्थाय देशस्य हिताय च, देश के हित के लिए पहले नहीं कहा उन्होंने, गौ के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए मुझे उसको मारना चाहिए। इसका मतलब देश का हित भी गौ और ब्राह्मण के हित के बाद में आता है, ये हमारा शास्त्र है, ये हमारा आदर्श है, गौ का हित सबसे पहले होता है, उसके बाद में ब्राह्मणों का हित, उसके बाद में देश का हित आता है। प्रभु रामचंद्र ने भी इसको साबित कर दिया है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जप साधना शास्त्र अध्ययन और किसी भी प्रकार की साधना और सेवा जो हम गौशाला के अंदर करते हैं तो उसका 100 गुना लाभ हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गौ का गौरव तो अमर्याद है, और अगर हम शहर में रहते हैं और हमें गौ की प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए मौका नहीं मिलता है, समझो मेरी बेटी छोटी थी ना तो वो हमेशा रोज जिद करती थी, पापा एक गाय को लेके आओ ना। मैं बोला कहाँ रखेंगे उसको, वो हमारा पार्किंग जगह है वहां पर रखेंगे ना, तो हम शहर में रख नहीं पाते, को बहुत सारे सोसाइटी के नियम, इधर के उधर नियम, फिर कहते गाय जहाँ होती है वहां पर बहुत मक्खियां होती है तो रोग राय होती है, तो अस्पताल के आसपास गाय रखना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा होने पर भी पक्का शहर में रहने वाले लोगों को भी गाय के साथ में अपना संबंध बनाए रखना चाहिए, जहां पर भी गौशाला है वहां पर अपनी सेवा देते रहना चाहिए, उनके उद्धार के लिए नहीं हमारे उद्धार के लिए, क्योंकि हमारा जो भक्तिमय जीवन हम चलाना चाहते हैं और भक्ति में आगे प्रगति करके भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जब तक ये भक्तिमय गतिविधियों में गाय का संपर्क नहीं होता है, गाय प्रवेश नहीं करती उसके अंदर, आपके भक्ति जीवन के अंदर गाय का प्रवेश अगर नहीं है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से, तब तक सही रूप में भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग अगर शहर में रहते हैं और उनको गाय का मुख भी देखने को नहीं मिलता, इतने हम लोग शहर के अंदर रह रहे समझो, फिर भी दूर कहीं गौशाला होगी जहाँ पर सच्ची सेवा, निष्पाप सेवा, निरपेक्ष सेवा चल रही है, वहां पर अपना धन हमको जुटाना चाहिए। मेडिकल में तो क्या कहें आपको, टीवी वाले मरीज को कहते हैं गौशाला में बैठकर जप करना चाहिए, जप करना मतलब कोई कुछ ना कुछ काम को करना चाहिए ना, तो जप करना सबसे अच्छा है, क्योंकि वो जो हवा है गौशाला की, जो गोबर गोमर गोबर गोमूत्र से मिश्रित हवा आती है, वो टीबी को ठीक करने के लिए बहुत फायदा देती है। आप कितने भी मन से परेशान हो, होता ना स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, उसका भी एक कारण है कि शहर में ज़्यादा टेंशन क्यों होता है, स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि शहर के लोग कभी भी नंगे पैर पृथ्वी पर नहीं चलते हैं। आप भी खुद सोचो, आप लास्ट टाइम जूता निकाल कर नंगे पैर पृथ्वी पर कब चले, शायद बरसाना में चले होंगे अभी आने के बाद। लेकिन रोज हमारा जीवन कैसे रहता है, या तो हम जूता पहन के चलते हैं या तो हम डामरी रास्ते पर चलते हैं, डामर पे चलते हैं, लेकिन मट्टी अर्थ पृथ्वी को भू माता के ऊपर कभी हमारे पैरों का स्पर्श नहीं होता है। भू माता के अंदर बहुत शक्ति होती है कि वो आपके बहुत सारे टेंशन जो है ना वो निकाल सकती है पैरों के माध्यम से। और अगर वो भू माता अगर गोबर से लिप्त है, गोबर का लेप किया गया उसके ऊपर, उस पर चलना ही स्ट्रेस नष्ट करने का एक उपाय है। आप करके देखिए, नंगे पैर कहीं गोबर लिपा हुआ है वहां पर जाके चलते रहिए आप, वहां पर वॉकिंग मॉर्निंग वॉक करते करते जब कीजिए आप। ये बहुत सिंपल तरीके हैं जो हमारे जीवन से नष्ट हो चुके हैं। नंगे पैर चलना मतलब बहुत अभी अशिष्ट माना जाता है, सुसंस्कृति में नहीं आता है, लुक्स लाइक अनकल्चर्ड टू वॉक विदाउट शूज। तो ये सब विदेशी संस्कृति है। गोबर में इतनी शक्ति है कि वो, गाय में इतनी शक्ति है कि अगर आप, मैं गोबर की बात कर रहा हूं पर गाय की बात करेंगे तो आपको अगर कितना भी मन में टेंशन रहेगा तो आप गाय के पास जाकर प्रेम से उसके ऊपर हाथ घुमाते रहिए पीठ के ऊपर से, आपका सारा टेंशन चिंता स्ट्रेस जो है वो गाय ले लेगी आपसे। हमारे गिरिराज प्रभु उसके प्रूफ हैं, हमेशा बताते रहते हैं। गाय के पास जाने से ही आपके साथ आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो छीन लेती है। कितना भी नकारात्मक आपकी भावनाएं हैं, होता है ना, अभी इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, इसके ऊपर द्वेष हो रहा है, इसके ऊपर लालच हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसका झगड़ा हुआ था वो याद आ रहा है, सब नेगेटिव बातें नकारात्मक मन में भरी रहती है, वो सारी नेगेटिविटी गाय तत्क्षण छीन सकती है आपसे। इसलिए ग्वाला और किसान, ये सबसे सच्चा किसान और ग्वाला सबसे शांत और निश्चिंत रहते हैं हमेशा, देखो आप, क्योंकि वो हमेशा गोबर गोमूत्र ग्वाला और जमीन और रज जो है भूमि उसके संपर्क में किसान रहता है, इसलिए वो कभी भी उनको टेंशन नहीं आता, आराम से रहते हैं। आप जितने जाओ गांव को देखो, सब लोग रस्सी घाट पे सोए हैं, आराम से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, हम लोग, अरे क्या है, क्योंकि वो शहर के लोग भागते क्यों रहते हैं, शहर के लोग भागते हैं लोभ को पूर्ण करने के लिए, जरूरत को पूर्ण करने भागते नहीं वो। सिटी पीपल डोंट रन 24 आवर्स अ डे टू फुलफिल देयर नीड्स, बिकॉज सिटी पीपल हैव एग्जैगरेटेड नीड्स विच दे हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियली, उसको पूरा करने के लिए उनको दिन भर भागना पड़ता है। लेकिन गांव के जीवन में वो लोभी नहीं है और जरूरत बहुत कम होती है, इतनी जरूरत नहीं होती है मनुष्य को जीवन चलाने के लिए, लेकिन हमने वो मल्टी कंज्यूमरिज्म बना के रखा है। एक घर में एक व्यक्ति के पास 5 घड़ी होती है, एक घर में 4 गाड़ियां होती है, 2 स्कूटर होती है, एक घर में 4 कमरे में 4 टीवी होते हैं, एक व्यक्ति के 8-8 जूते होते हैं, है होते कि नहीं एक व्यक्ति के 8-8 जूते होते हैं। एक इंग्लैंड की औरत थी, उसके पास 220 जोड़ी के जूते जोड़ी थे जूते। शी वॉज वेरी ग्रेट इन डिप्रेशन, तो हर हफ्ते जाके एक नया जूती जोड़ी जूता लेके आती थी वो, और 2 कमरे भर के जूते ही जूते थे। वो जूता निकाल कर अगर जमीन पे चलेगी ना तो जूतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सारा तो तनाव जो है वो केवल नंगा पैर चलने से समाप्त हो जाएगा। सी विदेशी लोग कैसे सोचते हैं और हमारी संस्कृति क्या बोलती है, एकदम उल्टा और सिंपल, विदेशी लोगों का एकदम उल्टा और कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए गौ माता हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। कहते हैं कि सुबह उठकर अगर गाय का स्मरण भी आप करेंगे ना तो आप पवित्र हो जाएंगे। अगर इनडायरेक्टली अगर आप गाय का गोबर का बनाया हुआ साबुन यूज़ करेंगे, गाय का बनाया हुआ गोबर का शैम्पू यूज़ करेंगे, गाय का बनाया हुआ टूथपेस्ट यूज़ करेंगे, टूथ पाउडर यूज़ करेंगे, गाय गोमूत्र से बना हुआ कुछ और उपयोग करेंगे, गोमूत्र को पियेंगे या गोरस पियेंगे, दूध पियेंगे या दही खाएंगे या घी खाएंगे, गो से संबंधित कोई भी वस्तु का आपको स्पर्श भी होगा तो भी आपके पाप नष्ट होते रहेंगे, इतनी शक्ति है गौ के अंदर। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल अभी गौशाला का जो कंसेप्ट है ना, वो भी ये अर्वाचीन कंसेप्ट है, मतलब आधुनिक कंसेप्ट है। ये गौशालाओं का कंसेप्ट पहले नहीं था, क्योंकि हर घर में एक गाय होती थी, तो गौवे ऐसे आवारा घूमती नहीं थी। उनको आवारा कहना भी गलत बात है एक्चुअली, बट बेसहारा कह सकते हैं उनको, ऐसे कोई मालिक नहीं उसका, ऐसी स्थिति नहीं थी पहले। गौशाला क्यों बनाने लगी? क्योंकि लोग गऊ को बोझ बांधने लगे और उनको त्यागने लगे, या तो वो क्या करते हैं, रखते हैं उनको, लेकिन उनका पोषण नहीं करते हैं, उनको भेज देते हैं, तो वो यहाँ वहाँ किधर भी चर के आती है, शाम को घर पे आ गई, उसका दूध निकालेंगे, देंगे कुछ नहीं उसको, और एक दिन दूध देना बंद करेंगे तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर कोई कसाई आके उठा के ले जाएगा उसको। तो फिर वो जो वेद वेद जानने में लोग थे, जो गऊ का महत्व जानते हैं, उन्होंने फिर ऐसे गायों को इकट्ठा करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे गौशालाएं बनने लगी उनको रखने के लिए, बड़ी बूढ़ी जो अभी दूध नहीं दे रही है ऐसे लोगों के। तो इतनी बड़ी गौशाला बनाने का कारण क्या है और जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोग अपने अपने एक एक गाय का जो जो जिम्मेदारी है वो त्याग कर ऐसे छोड़ रहे हैं उनको, फिर वो उनकी संत लोग रक्षा कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी में। लेकिन वास्तविक सॉल्यूशन जो गौ रक्षा का है, वो हर एक व्यक्ति को अपने अपने घर में एक एक गाय रखने से पूर्ण होगा। उसके लिए एजुकेशन देना होगा कि गौ कितनी क्या कहते हैं उसको, इम्पोर्टेंट है, और वो हमारे को भी मेंटेन कर सकती है, हमारे जीवन को संभालने वाली है वो, हम उनको संभालने वाले नहीं है। वी आर नॉट द मेंटेनर ऑफ काउज, काउज आर मेंटेनर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये जो मूलभूत विचारधारा है ना, यही बदली हो गई है। ये लोग सोचते हैं काम हमारे ऊपर डिपेंड है, हम उन पर डिपेंड है। पृथ्वी का पूरा जो पर्यावरण है वो भी गौ रक्षा पर आधारित है। द होल एनवायरमेंटल साइंस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन काउज। केवल गौ की सेवा करने से हमारा पर्यावरण भी सुधर सकता है, भूमि उपजाऊ हो सकती है, हर प्रकार की बीमारी गौमूत्र गौमूत्र और गोबर के दोबारा दवाई बनने से हो सकती है। अभी मैं आपको एक लास्ट बात बताऊंगा, हाँ, लेटेस्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट। हाँ, शायद गिरिराज प्रभु को पता नहीं, मालूम नहीं, बट दिस इज द लेटेस्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट। उसमें अभी भी चल रहा है काम, पूरा नहीं हुआ है। अभी साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रूव कर दिया है ऑलमोस्ट, जो आयुर्वेद हजारों सालों से कह रहा है कि सभी रोगों की जड़ जो है बड़ी आत्में होती है। इन बिग इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, द होल रूट ऑफ ऑल इल हेल्थ इज देयर। तो अभी उन्होंने इतना रिसर्च किया है कि लार्ज इंटेस्टाइन के बड़े जगह पर जितना भी एरिया है उसमें कुछ कुछ विशिष्ट प्रकार के जंतु जाकर रहने लगते हैं। वो भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ ये प्रकार का जंतु अगर वहां पर रहने लगा कॉलोनी बनाकर, तो फिर ये प्रकार का कैंसर होता है। समझ आपको आया? बहुत बैक्टीरिया के नाम है हमारे मेडिकल में, तो ये प्रकार का नाम के बैक्टीरिया अगर सब जगह फैले हुए हैं तो उस व्यक्ति को एक एक प्रकार का कैंसर होगा। दूसरे प्रकार के जंतु अगर फैलने लगे तो वो ब्रेस्ट कैंसर होगा, तो किडनी कैंसर होगा, तो ब्रेन कैंसर होगा, ये कैंसर होगा, ऐसे सब उन्होंने अभी रिसर्च किया है। तो ऐसा क्यों होता है? एक प्रकार के विशिष्ट रोग जंतु वहां पर क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि उसकी जीवन शैली ऐसी है, उसकी तनाव उसके ऐसे हैं कि वो तनाव के अंदर वे रोग जंतु बढ़ते रहते हैं, और वो अब जाके बड़ी आंतों में जाकर बस जाते हैं। इसलिए हमारे संस्कृति में दोपहर को छाछ पीने का कल्चर था, क्योंकि वो छाछ में वो नेचुरल और मित्रता वाले बैक्टीरिया रहते हैं, जो ये रोग वाले बैक्टीरियाओं को वहां से हटा देते हैं और खुद वहां बस जाते हैं। आपको समझ में आया? छाछ खट्टा होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे निरोगी और फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। तो रोज दोपहर में भोजन के अंत में दही भात या छाछ पीना दोपहर को, ये हमारे संस्कृति का एक कल्चर है, पूरा एक अविभाज्य अंग है। तो वो अब लोग नहीं करते अभी, कभी भी हफ्ते में एक बार बनता है, 2 दिन में, 3 4 दिन में, हफ्ते 15 दिन में एक बार बनता है। तो उन्होंने क्या किया, अभी देखो ये जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, रिसर्च करने वाले, उनका दिमाग कैसे चलता है, उनको लगा कि स्वस्थ आदमी का जो विष्ठा है स्टूल, उसके अंदर स्वस्थ निरोगी बैक्टीरिया होते हैं। तभी उन्होंने उसको प्रोसेस करके इंजेक्शन से रूप में, बड़े इंजेक्शन के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन में डालना शुरू कर दिया है, ताकि ये स्वस्थ स्टूल जो है, स्वस्थ व्यक्ति का स्टूल जो है, वो जो रोगी व्यक्ति का आते हैं उसको शुद्ध कर देगा। एंड दे हैव प्रूव्ड कि वो स्वस्थ व्यक्ति के विष्ठा से जब इंजेक्ट करेंगे आंतों में, तब ये बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे और कैंसर इस प्रकार से ठीक हो सकता है। लेकिन हमारा साइंस जो है, हमारा वेद जो है, वो पुरातन काल से बता रहा है कि पंचगव्य का सेवन करने से कभी किसी व्यक्ति को कैंसर नहीं होता है। पंचगव्य मतलब क्या है? दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, इसका प्रमाण होता है। उसको मिक्स करते हैं और 8 पदरी कॉटन के नरम रुमाल से छानते हैं उसको, और जो नीचे गिरता है उसको पंचगव्य कहते हैं। उसको सेवन करने से कभी भी किसी व्यक्ति को कैंसर नहीं हो सकता है। तभी गोबर को इंजेक्ट करने के बदले में मनुष्य का स्टूल उसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन ऐसी एक उधर गुजरात में एक साइंटिफिक गौशाला है जहां पर ये रिसर्च भी चल रहा है कि गोबर को प्रोसेस करके अगर इंटेस्टाइन्स में डाला जाए, ऊपर से या नीचे से, तो कैंसर भी ठीक हो सकता है। ये रिसर्च अभी एलोपैथी के लोग ही कर रहे हैं। एक प्रकार का घी आता है जिसको कहते हैं क्या नाम उसका, गोबर, पंचगव्य घृत, यानी घी के अंदर गोबर मिलाकर उसको प्रोसेस करते हैं और वो साइंटिफिकली आयुर्वेद की तरीके से ऐसा घी बनाते हैं जिसके अंदर गोबर भी, मेरे पास अभी कमरे में है। वो सवेरे 1 चम्मच खाली पेट पे गर्म पानी से सेवन करने से जितने भी आपके अंदर कैंसर की प्रवृत्तियां हैं वो सब नष्ट हो सकती हैं। और शहर में रहकर तनावपूर्ण जिंदगी जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना होती है। स्ट्रेस इज द बिगेस्ट रीजन, और शहर के जीवन का स्थायी भाव स्ट्रेस है, इज इट नॉट ट्रू? तो अगर आपको शहर में रहकर कैंसर से मुक्त रहना है तो आपको गाय का संपर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग ये सबसे मुक्त हो सकते हैं। और ये पंचगव्य का सेवन मैंने कई महीनों तक किया। अभी थोड़ा सा गौशाला में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए तो थोड़ा मिलना बंद हो गया, लेकिन मैं और मेरी पत्नी हर रोज सुबह लेते थे उसको। बहुत स्वादिष्ट होता है वो, आपको लगता है अरे क्या, कैसे खाएंगे गोबर, कैसे पियेंगे गोमूत्र। ये केवल मन की एक स्थिति है, मन में वो ऐसा एक बैठा हुआ है कि कैसे पियेंगे, लेकिन कुछ दिन आपको लगेगा ऐसे ही। लेकिन गोमूत्र पीने का अभ्यास होगा तो आपको बड़ा पीने में आनंद आएगा उसके अंदर। और मुझे तो गोमूत्र से अधिक पंचगव्य पीने में बहुत आनंद आता था। बहुत स्वादिष्ट नमकीन होता है, बहुत सुबह पे पीने में बड़ा मजा आता है उसमें। तो हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर से भी मैंने चर्चा की इसके बारे में, उन्होंने कहा कि ये बहुत पावरफुल तरीका है। तो हमारे पूना मंदिर में, हमारे मुंबई के मंदिर में ये मिलता है, पंचगव्य घृत। और हमारे डॉक्टर मित्र हैं जो अमेरिका में रहते हैं, बड़े गौ भक्त हैं वो, उन्होंने मुझे सब बातें बताई कि अमेरिका में लेटेस्ट रिसर्च क्या चल रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सुनकर, तो जो आपको भी बता दूं, कभी मौका मिला तो आयुर्वेद के डॉक्टर के सलाह के अनुसार ये गोमूत्र गोबर का कैसे आपके प्रकृति के लिए योग्य उपयोग है वो सब ढूंढ लीजिए आप, और जरूर कीजिए उसको। और कुछ भी आपको जमता नहीं है तो गोमूत्र अर्क मिलता है, वो गोमूत्र अर्क आप लीजिए। 1 चम्मच अर्क 1 ग्लास पानी में डाल दीजिए, गुनगुने पानी में, और उसको पी लीजिए। किसी की पित्त प्रकृति होती है बहुत, उनको चक्कर आता है, धूप में तकलीफ होती है, जैसे मुझे आता है, तो हमारे लिए भोजन के बाद वो कहा गया है, भोजन के बाद में 1/2 ग्लास पानी में 1 चम्मच गोमूत्र अर्क डाल के आपको पीना है सुबह और शाम। और बहुत गर्मी का मौसम है तो रात को सोते समय 1 ग्लास में 1 चम्मच गोमूत्र अर्क करके आपको पीना है। कई प्रकार के अनगिनत बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। 300 प्रकार के रोग गोमूत्र के द्वारा नष्ट हो सकते हैं। मैं आपको लगेगा तो पूरे हवा में तीर चला रहे हैं हम लोग। इसका भी धीरे धीरे रिसर्च होगा और फिर उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो हम आपको विनती करते हैं कि कहीं से भी होगा, कुछ कैसे भी होगा, अपने उद्धार के लिए गौ सेवा से संलग्न हो जाइए। और अगर हम लोग, शहर के लोग, ये हर प्रकार के विदेशी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, हर प्रकार के शैम्पू यूज़ करते हैं, इसकी इतनी करोड़ों रुपये खर्च करते हैं उस पर एडवर्टाइज करने के लिए, और उसके बदले में हम गौ माता के द्वारा निर्माण किए गए साबुन, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, शैम्पू और फलाना फलाना जो भी है, सौंदर्य लेप, फेस पाउडर, फेस पैक्स, हर प्रकार की वस्तु गौ की मिलती है, उसका उपयोग करना शुरू कीजिए। जब ये इंडस्ट्री बढ़ेगी तो गौ पालन भी बढ़ेगा, क्योंकि गोबर कहाँ से आएगा? गौ माता से आएगा, गोबर चाहिए ये बनाने के लिए, तो गौ के पालन शुरू हो जाएगा। गौ को दूध बंद करने के बाद लोग टाल नहीं देंगे, त्याग नहीं देंगे, रखेंगे उनको, गोबर तो मिल रहा है, कोई खरीद के लेके जा रहा है, उसका शैम्पू बन रहा है, तो उसका भी कीमत बढ़ेगी, गौ की कीमत बढ़ेगी, आपकी कीमत बढ़ेगी, आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी आयु की क्वालिटी बढ़ेगी। भगवान की दया से 2002 में एक उत्तम गौ भक्त है उत्तम महेश्वरी जी, उनका हमारा संपर्क हुआ। तब से आज तक कोई टूथपेस्ट, कोई टूथ पाउडर, कोई शैम्पू गौ के बिना यूज ही नहीं करते हम लोग। सारा हमारा टॉयलेट रूम रूम जो है वो पूरा गौ प्रोडक्ट से भरा हुआ है। फेस पैक से लेके आंखों के ड्रॉप से लेके टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, शैम्पू, टू शेविंग क्रीम तक गोबर गोमूत्र से बना हुआ है। करना ही नहीं यूज हमको, और करना भी नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं मिलता है कुछ भी, आप सेंधा नमक से अपना ब्रश कीजिए, लेकिन केमिकल वाले विदेशी टूथपेस्ट यूज मत कीजिए। सारे साबुनों में यहाँ पर प्राणियों का मांस से बना, चर्बी बना, चर्बी से बना हुआ तेल यूज करते हैं, और गौ मांस, गौ की चर्बी भी यूज करते हैं। तब आपके शैम्पू और आपके झाग वाले वस्तुएं बनती हैं टूथपेस्ट जैसे लोगों की। टूथपेस्ट के अंदर जानवरों की हड्डी की पाउडर होती है। तो इतना सब रिस्क ले रहे हैं हम लोग, शाकाहारी है, लेकिन सुबह उठ के कोलगेट लगाते हैं तो क्या करते हैं, बोन पाउडर मुंह में डाल रहे हैं और शाकाहार को मेंटेन कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए गौ माता का आश्रय लीजिए। गौ माता आपको, आपके जीवन में कितनी गतिविधियां हैं, हर गतिविधि में सहायता करेगी वो। सबसे स्वादिष्ट भोजन का कौन सा होता है, जो गोबर के कंडे में बनता है। लकड़ी भी स्वादिष्ट बनता है, लेकिन लकड़ी से भी सर्वश्रेष्ठ जो है गऊ के कंडे पर केवल उसको जलाकर अग्नि बनाकर उसमें जो भोजन बनता है वो सबसे स्वादिष्ट होता है। मट्टी के बर्तन में गऊ के गोबर को जलाकर जो भोजन बनता है, कहते हैं 100% उसका जो सत्व है अन्न का वो हमारे को प्राप्त होता है। बाकी स्टील के बर्तन आ गए, तांबा के बर्तन आ गए और गैस आ गया, तो आपके परसेंटेज कम 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 होते जाते हैं। जितना मेहनत करके आप धन कमाते हैं, उसका जो धन अन्न का जो हित आपको मिलना चाहिए सत्व, उसके परसेंटेज कम कम होते जाते हैं। तो मट्टी का चूल्हा में भी गोबर के कंडे की अग्नि के ऊपर मट्टी के बर्तन में बनाया खाना जो है सबसे स्वादिष्ट भी होता है, सबसे पोषक भी होता है। और दाल चावल भी खाएंगे तो भी आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार शक्ति जो है वो बनी रहेगी। कहाँ कहाँ तक गाय आपको मदद कर रही है, देखो किस किस चीज़ में। उसके उसका स्टूल भी जो है ना, गाय का गोबर भी एक ईंधन है आपके लिए। पड़ा रहने से भी उसका गोबर गैस से, अभी कई गौशालाएं चल रही है, उसकी बिजली चल रही है, उसका फ्रिज चल रहे हैं, उसके क्या क्या चल रहे हैं, केवल गोबर रखने से जो गैस बनता है उससे कितनी चीज़ चल रही है। घड़ियाँ चल रही है हमारे बैलगांव के गौशाला में, घड़ियाँ जो है ना वो गोबर गोमूत्र के ऊपर ऐसे तार लगा कर चला रही है। वायर्स आर केप्ट ओनली इन, इलेक्ट्रोड्स आर केप्ट ओनली इन काउ यूरिन एंड द घड़ी इज रनिंग। ऐसा कोई जीव है कि इसका ऐसे इतनी मात्रा में, इतनी गहराई में जिसका जीवन में हमारा सहायता हो रही है। तो आइए, समय इतना ज़्यादा नहीं है, अभी अभी इस गौशाला में गौ भक्तमाल की कथा 5 दिन के लिए हुई थी। रोज 4 घंटे केवल गौ के ऊपर गौरवशाली कथाएं बताई गई। मैंने अधिकतर सुनी वो लाइव, उससे ही कुछ आपको मैंने बता रहा था। ये कितना गौ का महत्व, जितना समझेंगे उतना कम ही है। उसके आगे भी है, उसके आगे भी है, उसके आगे भी है। कोई भी नहीं कह सकता कि सब मालूम है मुझे गौ के बारे में। गौ की कथा और गौ का गौरव अगाध है। तो हमारे जैसे, आप जैसे सारे सभी लोगों को इतने विनती कर सकते हैं कि ये ना किए ना प्रकार आप गौ से जुड़ जाओ। जब मौका मिले तो गौशाला में जाओ और गौ में हाथ घुमा के आ जाओ, कम से कम उतना तो कर सकते हैं। बच्चों को ले जाओ, बच्चों को गौ से प्रेम करने का संस्कृति दे दो, संस्कार दे दो। बच्चों को गाय से आसक्त बनाओ। बच्चे गाय से डरते हैं, गाय पर प्रेम करने वाले बच्चों को संस्कार दे दो। तो गौ माता हमको सब कुछ देती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।